ओम शांति। अव्यक्तवाणी 16 जून 1969। बड़े से बड़ा त्याग अवगुणों का त्याग। दूसरा पॉइंट है, अच्छा आज तो खास कुमारियों के प्रति ही आए हैं। आज कुमारियों का कौन सा दिन है? किसी ने कहा मिलन दिन। रिजल्ट भी आप सभी की निकली है। अपने रिजल्ट को खुद जान सकती हो? त्रिकालदर्शी बनी हो? इस ग्रुप से नंबर वन कुमारी कौन सी निकली है? किसी ने कहा चंद्रिका। नंबर वन का मुख्य कर्तव्य है अपने जैसा नंबर वन बनाना। कुमारियों को तो अभी एक और पेपर देना है। वह पेपर प्रैक्टिकल का न कि लिखने का। बाबा कहते हैं अच्छा आज तो खास कुमारियों के प्रति ही आए हैं। आज कुमारियों का कौन सा दिन है? बच्चे इस बात को समझे, जब भी बाप कहता है कुमार और कुमारी, यह शब्द सुनते ही अगर आप आत्मिक स्थिति छोड़कर देह भान में आ जाते हो कि मैं कुमार हूं या मैं कुमारी हूं, तो दुर्भाग्य की बात है। हर आत्मा कुमार है, हर आत्मा कुमारी है। समझ की बात है, ऐसे बच्चे कभी ना समझे कि आज कुमारों का या कुमारियों का दिन है माना हमारा दिन है। कुमार कुमारी भी तो शरीर से होता है ना, तो देह भान में कभी नहीं आना कि आज बाबा हमारे लिए कुछ बात कहने जा रहा है। गलत फहमी है। सदा आत्मिक स्थिति में रहना, देह भान में कभी नहीं आना। फिर अधर कुमार या अधर कुमारी हो, जो भी हो, है तो सभी बच्चे ना, आत्मा ना, तो कभी भी इन शब्दों में अटकना नहीं है। शब्दों से जो छूटा वही संसार से छूटा, शब्दों में जो फंसा वो संसार में फंसा। वो एक बिलीफ सिस्टम है, पुरानी पढ़ाई है शब्दों की। बाबा तो साइलेंस सिखा रहा है तुम्हें। यह ज्ञात किया गया है कि यह स्तुति है, यह निंदा है, यह मान सम्मान है, यह अपमान है, यह शब्दों का खेल है। तुम बच्चे अभी भी उन शब्दों में अटके हो, उन शब्दों से ऊपर उठो। अगर शब्दों में अटकना है तो है ना आत्मा, परमात्मा ड्रामा बस हो गया, और क्या चाहिए? बस हो गई पढ़ाई, शब्दों से बाहर निकलिए, शब्दों में नहीं फंसना है। शब्द बॉडी कॉन्शियसनेस में लेके आते हैं, शब्दों में नहीं अटकिए। तुम अपनी चेकिंग करो, इस दुनिया के शब्द कहीं तुम्हारे ऊपर प्रभाव तो नहीं डालते? अपनी चेकिंग करो। किसी ने तुम्हें कहा है, सिखाया है और तुम सीखे हो कि फलाने शब्दों को गाली कहा जाता है, और जब कोई उच्चारण करता है तुम्हारे सामने तुम्हें बुरा लगता है। उस बिलीफ सिस्टम से बाहर निकलो, शायद उन्हीं शब्दों का अर्थ किसी और भाषा में कुछ और होता हो, किसी और कंट्री में, किसी और रिलीजन में कुछ और होता हो। पर तुम किस में अटके हो? बिलीफ सिस्टम में। तुम्हें जो लगता है कि इन शब्दों का अर्थ बुरा है, शायद कहीं और देश में उसका अर्थ बहुत ऊंचा हो, बहुत श्रेष्ठ हो। तुम सत्य क्या जानते हो? इसलिए शब्दों से बाहर आओ। जब तक शब्दों से बाहर नहीं आते, तब तक ज्ञान समझ में नहीं आएगा, आत्मिक स्थिति में आना संभव नहीं है। शब्द मन कौन से? संसारी शब्द। संसारी शब्दों से बाहर निकलिए। शब्दों में अटकना है तो ज्ञान के मुरली के अटको, संसार के शब्दों में क्यों अटकना? तो बाबा कहते, आज तो खास कुमारियों के प्रति ही आए हैं। हर आत्मा कुमारी है, कुमार है। माताएं यह ना समझे कि सिर्फ बाप कुमारियों के लिए आया है देह रूप में, तो क्या कुमार उठ के बाहर जाए या वो शब्द ना सुने? समझ की बात है। वापिस कहते, हर आत्मा कुमार कुमारी है। आज कुमारियों का कौन सा दिन है? आत्माओं का, किसी ने कहा, मिलन दिन। रिजल्ट भी आप सभी की निकली है। अपने रिजल्ट को खुद जान सकती हो? त्रिकालदर्शी बनी हो? बाबा पूछ रहे आत्मा से, त्रिकालदर्शी बने हो? भूत वर्तमान भविष्य जानते हो? पता है? चेक करो। त्रिकालदर्शी बनना बहुत आवश्यक है। त्रिकालदर्शी माने क्या? चक्र में त्रिकालदर्शीपना आ जाता है। सतयुग त्रेता द्वापर कली से पार्ट बजाते पास्ट से संगम युग में वर्तमान में है, और संगम में भरपूर होकर भविष्य में जाएंगे, सतयुग में परम धाम होकर। यह हुई त्रिकालदर्शीपने की स्टेज। भूत को समझा कि इतने विकर्मों को विनाश करना है, 63 जन्मों में हमने इतने विकर्म किए हैं, और उन विकर्मों को विनाश करने का उपाय एक ही है, बाप की याद। और अभी वर्तमान में उस याद में बैठना है और विकर्मों को विनाश करके भविष्य में ऊंच पद लेना है। हो गई त्रिकालदर्शीपने की अवस्था स्टेज। तीनों कालों को सदा स्मृति में रखो, तुम कौन थे, बाप ने तुम्हें उठाया और बाप तुम्हें क्या बना रहा है, ध्यान में रखो। जब बच्चे ध्यान में रखते हैं कि हम क्या थे, तुम्हारे गीत है ना, उसमें बोल है ना, उठा के धूलिकन को मस्तक से ऐसे लगाया, चमकने लगे सितारों के जैसे। बाबा कहते हैं जो आत्मा सदैव स्मृति में रहती है कि हम धूलिकण थे, तो धूल परमात्मा से क्या बात कहे, क्या पूछे, क्या राय ले, बस चले, क्या पूछना है। तुम गाते तो हो पर स्वरूप में नहीं आते हो, तुम्हारे बोल है। मैंने नहीं कहा तुम्हें कि तुम धूलिकण हो, पर तुम्हारे खुद के भक्ति के बोल है, वो भी इसलिए बोले गए हैं ताकि नम्रता रहे, अहंकार ना आए। धूलिकण कोई है नहीं, आत्मा तो श्रेष्ठ है, पर अहंकार ना आए इसलिए बोले गए हैं। तो अगर स्मृति में रहे कि हम यह है, तो अहंकार कभी नहीं आएगा। किस बात का अहंकार, बाप मिला है, इससे बड़ी प्राप्ति क्या होगी। समझ की बात होती है। किसी को 3 दिन से 4 दिन से भोजन नहीं मिला है, और अगर भोजन मिले तो उस भोजन को लेकर अहंकार या विपरीत अशुद्ध भावना, ये भोजन ठीक नहीं है, इसमें नमक नहीं है, यह ऐसा क्यों है, ये तड़का ऐसे क्यों लगाया, ये रोटी ऐसे क्यों सेकी, ऐसे नहीं आनी चाहिए, वरना वो भोजन और दूर हो जाता है। अगर तुम्हें कदर नहीं है, समझ के बात है, तो दूर हो जाता है। तुम अपने पास्ट में रहो कि तुम सोचो तुम कैसे थे, बाप ने क्या बनाया है, क्या सौभाग्य दिया है तुम्हें, कितनी प्राप्तियां दी है तुम्हें, स्वयं का ज्ञान दिया है, परमात्मा का, बाप का ज्ञान दिया है, ड्रामा का ज्ञान दिया है, चक्र का ज्ञान दिया है, त्रिकाल त्रिलोक सबका ज्ञान दिया है, इससे बड़ी प्राप्ति क्या होगी। और बाप बता भी रहा है कि आने वाले समय में हम अपने श्रेष्ठ राज्य में चलेंगे, इससे बड़ी प्राप्ति क्या हो सकती है। जो बच्चे भूल जाते हैं कि बाप ने कुछ नहीं दिया, बच्चे वही, बाप के सच्चे बच्चे वही, जो बाप मिलने के बाद कभी कोई इच्छा प्रकट ना करे, बाप के सामने कोई संकल्प ना रखे, बस चलते रहे, वही सच्चे बच्चे। बाकी बहुत है जो लौकिक इच्छाएं रखेंगे, नहीं तो अलौकिक इच्छाएं रखेंगे ज्ञान योग धारणा सेवा की, वरना पारलौकिक इच्छाएं रखेंगे कि सूक्ष्म वतन का अनुभव हो, हम ब्रह्मा बाबा से बाप दादा से बात करें सूक्ष्म वतन में, हमें शिव बाबा दिखे परम धाम में, ये सब इच्छाएं हैं, मम्मा को कभी साक्षात्कार हुआ? रखी कोई इच्छा? जैसे बाप चलाए। तुम ही गाते हो ना, हुक्मी हुक्म चला रहा है मम्मा के लिए। क्या अपने लिए नहीं गा सकते कि हुक्मी हुक्म चला रहा है? बस जीवन भर मम्मा के लिए ही गाना है, अपने लिए कब लगाएंगे कि हुक्मी हुक्म चला रहा है? ब्रह्मा बाप समान कब गाएंगे? तुम्हें संग बैठो, तुम्हें संग खाओ, अपने लिए, समझ की बात है। ऐसे तो नहीं है ना आपके जीवन में, हुक्मी हुक्म चला रहे हैं बाप पर, चेक करना। अगर आदत हो तो निकाल देना, बाप पर कभी हुक्म नहीं चलाना, न साकार न आकार न निराकार। कभी किसी के ऊपर हुक्म नहीं चलाना कि बाप कैसा है, आप देखो कितना नम्र रहता है बच्चों के सामने कि तुम ऊंचे हो। बच्चों को समझ में आना चाहिए, चेक करो। कहीं आप संकल्प तो नहीं उठाते योग में कि बाबा मेरा फलाना लौकिक अलौकिक पारलौकिक कार्य पूरा करके दो। ये हुआ हुक्म चलाना बाप पर। कितने भी दुख आए, कितने भी समस्याएं आए, बाप की याद में रहो। समाधान क्यों चाहते हो समस्या का? बाप की याद में रहो। जब बाप की मर्जी होगी, ड्रामा की मर्जी होगी, समस्या चली जाएगी, वरना जीवन भर रहेगी। यही समझना कि यही बाप की मर्जी है कि समस्या ऐसी ही रहे जीवन भर। तुम समाधान क्यों चाहते हो? तुम बाप की याद में रहो, बाकी बाप जाने समाधान देना है या नहीं देना है। तुम्हें अखंड बाप की याद में रहना है, कंबाइंड स्वरूप में। समझ की बात है बच्चों के लिए, इसलिए ध्यान दो। पास्ट कैसा था, वर्तमान बाप ने कैसे बनाया और भविष्य क्या बना रहा है, समझे। जो बच्चे बाप के सामने सदा चुप रहते हैं, उन चुप रहने वाले बच्चों को ही बाप बहुत कुछ देता है। उछलने वाले को नहीं देता, समझ की बात है। बच्चों का जो डब्बा होता है ना छोटा, जिसमें पैसे डालते हैं, दो चार कॉइन हो ना तो बच्चे डब्बा बजाते रहते हैं, ऐसी बात है। चुप रहने वालों का डब्बा बाप भर के रखता है सदा। वो इतना फुल भरा हुआ है कि तुम उठाकर बजाना भी चाहो फिर भी उसमें कॉइन को हिलने के लिए जगह नहीं है, माना भाग्य को बजने के लिए जगह नहीं। इतना बाप ने फुल भरा है, तुम दिखा ही नहीं सकते किसी को तुम्हारा भाग्य, इतना बाबा भरपूर करता है चुप रहने वालों को। इसलिए बाप के सामने सवाल नहीं पूछा जाता। जब समय आएगा बाप समय अनुसार हर ज्ञान देगा, और सवाल पूछकर समय से पहले तुम जो लोगे धारण नहीं कर पाओगे, वो तुम्हारे काम नहीं आएगा। अभी इस घड़ी तुम्हें जो श्रीमत मिली है उस पर तुम चलो, तुम्हारी स्थिति अनुसार अगली घड़ी जो मिलनी होगी मिलेगी, और नहीं मिलनी होगी तो तुम जो मिली है उस पर चलते रहो। समय से पहले ज्ञान नहीं लो, समझ बिगड़ जाएगी। कुछ बच्चे होते हैं जिनके पास ज्ञान के दो चार महावाक्य होते हैं, संभाल कर रखते हैं और उन्हीं पर जीवन भर चलते और संपन्न संपूर्ण बन जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ज्ञान के ग्रंथ तैयार करते हैं पर एक भी महावाक्य काम में नहीं आता उनके, इसलिए इकट्ठा करके नहीं रखो। तुम्हें जो मिला है उस पर चलते रहो, यह तुम बच्चों का कर्तव्य है। सवाल में नहीं जाओ। बाबा कहते हैं ना, मेरा पार्ट है ड्रामा प्लान अनुसार, जिस समय मुझे जो ज्ञान देना है वही दूंगा, समय से पहले मैं कोई ज्ञान नहीं दूंगा, तुम भल कुछ भी पूछो, मेरा पार्ट होगा तो मैं दूंगा, इसलिए पूछो मत। समझ की बात है। तो बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी बने हो, तुम्हें समझ है क्या थे क्या है और क्या बनेंगे, चेक करना, बड़ा श्रेष्ठ भाग्य बाप दे रहा है। इस ग्रुप से नंबर वन कुमारी कौन सी निकली है, किसी ने कहा चंद्रिका। नंबर वन का मुख्य कर्तव्य है अपने जैसा नंबर वन बनाना। जिनको ज्ञान मिला है वो दूसरों को ज्ञान देते चले, जितना मिला है। मिलने का अर्थ क्या है, सुनने को मिलना नहीं कहते। जो ज्ञान तुमने धारण किया है वही ज्ञान तुम दूसरों को दे सकते हो। बिना धारणा के जो ज्ञान तुम दूसरों को दोगे वो सब व्यर्थ माना जाएगा, क्योंकि खुद तुमने उसकी धारणा नहीं की है। जब तक तुम आत्मिक स्थिति में नहीं हो दूसरों को आत्मा की चर्चा नहीं सिखाना, नहीं बताना, व्यर्थ है वो, क्योंकि खुद तुमने धारण नहीं किया है। जब तक तुम खुद योग नहीं करते तब तक दूसरों को योग के बारे में कहना व्यर्थ है। हाँ, अगर यही ज्ञान तुम बाबा के नाम से कहते हो कि बाबा मुरली में यह कहता है तो बात अलग है, पर तुम अपने नाम से कहते हो दूसरों को कि सभी को आत्मिक स्थिति में आना चाहिए, योग करना चाहिए, तो व्यर्थ है। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए आपके अंदर कितना ज्ञान धारण हुआ है चेक करना, चेक करना। अभी तक ज्ञान में आने के बाद वहां से तुमने कितनी ज्ञान की धारणा की है चेक करना। स्थूल धारणा मत बताना, ब्रह्मचर्य, नॉनवेज, प्याज लहसुन, सफेद वस्त्र, अमृत वेला, बाहरी धारणा मत बताना। तुम कितना शांत स्वरूप बने हो, तुम कितना प्रेम स्वरूप स्नेह स्वरूप बने हो, तुम्हारी जीवन कितनी सुखी बनी है, आनंदमय बनी है, तुम कितना खुशी में मौज में रहते हो। तुमने अपने आप को कितना पाया है, परमात्मा को कितना पाया है, समझा है, सृष्टि चक्र को कितना समझा है, ये बताओ। बाहरी बातें मत बताओ। बच्चे जब भी बाप पूछता है तो बाहरी बातें बताते हैं। बाहरी बातों से हम क्या करेंगे, हम तो सब अंदरूनी सिखाने आए हैं। बाहरी बात को लेकर हम क्या करेंगे क्या? तुम यह बताओ, तुम आत्मिक स्थिति में कितना आए हो, पहला पाठ है, पहली शिक्षा है, बाकी सब बाद में। तुम सभी से आत्मा रूप में कितना व्यवहार करते हो, तुम विकारों से कितना मुक्त हुए हो, अंदरूनी बताओ। गुणों से कितना भरपूर हुए हो, अंदरूनी बताओ। बाहरी मत चर्चा करो। समझ की बात है। कुमारियों को तो अभी एक और पेपर देना है, वह पेपर प्रैक्टिकल का, न कि लिखने का। अभी तो एक मास की ट्रेनिंग की रिजल्ट में नंबर 1 है, लेकिन फाइनल रिजल्ट में भी नंबर 1 आ सकती है। लेकिन उसके लिए कौन सी मुख्य बात बुद्धि में रखनी है? बाबा कहते हैं फाइनल रिजल्ट में भी नंबर 1 आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए कौन सी बात बुद्धि में रखनी है? त्याग और सेवा तो है, एक और मुख्य बात है। सभी से बड़ा बलिदान कौन सा है और सभी से बड़ा त्याग कौन सा है? दूसरों के अवगुणों को त्याग करना, यह है बड़ा त्याग। देखिए, त्याग और सेवा तो है, बाबा कहते हैं त्याग और सेवा। त्याग और सेवा के बिना आध्यात्मिक राह नहीं बनती। समझ की बात है। आध्यात्मिक राह इन दो गुणों से बनती है, त्याग और सेवा। अगर आपके अंदर त्याग का गुण है और सेवा का गुण है तो आप आध्यात्मिक बन सकते हो। त्याग मन हर प्रकार का त्याग। त्याग करेंगे तभी तो सेवा करेंगे। समझ की बात है। विज्ञान वाले भी आपके लिए त्याग कर रहे हैं दिन रात। नींद का त्याग, भोजन का त्याग, अपने परिवार का त्याग, मन दूर रहना परिवार से, हर बात का त्याग कर रहे हैं विज्ञान वाले। इसलिए आज आप सुख में हो। रात दिन प्रयोगशाला में बैठकर प्रयोग करते हैं, किसके लिए? मानवता की सुख के लिए, सारी दुनिया की सुख के लिए। उन्हें क्या मिलता है? दुनियावी प्राइस, दुनियावी किताब, और क्या मिलता है? कुछ नहीं। पर दुनिया के लिए कर रहे हैं, सारा त्याग किया है तभी तो सेवा कर पा रहे हैं। त्याग होना बहुत आवश्यक है। त्याग के बिना कभी सेवा नहीं हो सकती, ध्यान में रखना। बिना त्याग के सेवा नहीं होती, और बिना त्याग के जो कोई सेवा करते हैं ना, वो मनमौजी है। जब उनका मन होता है तभी वो सेवा के लिए जाते हैं, जब उन्हें मूड आता है, अभी कोई काम नहीं है, कोई कार्य नहीं है, तो सेवा में चले जाएंगे, तब वो सेवा करेंगे चेंज के लिए। ऐसे बच्चे विश्व कल्याण नहीं कर पाएंगे, स्व कल्याण भी नहीं कर पाएंगे। स्व कल्याण के लिए भी त्याग लगता है, खुद की बातों से, खुद के संस्कारों से। जब आप त्याग करेंगे खुद के रूटीन से, खुद की व्यवस्था से, तब जाके आप खुद खुद की सेवा कर पाएंगे। मुरली पढ़नी है तो त्याग करना पड़ेगा बाकी बातों का, और मुरली के लिए समय निकालना पड़ेगा। खुद की सेवा की बात कर रहे हैं। योग करना है तो बाकी सांसारिक बातों का त्याग करके समय निकालना पड़ेगा, तब जाके खुद की योग से सेवा कर पाएंगे। धारणाएं करनी है तो इच्छा मात्रम अविद्या बनना पड़ेगा, वो भी तो त्याग हुआ, सभी बातों को छोड़ना, तभी तो धारणा कर पाएंगे। और विश्व की सेवा करनी है तो सारे संसार का, सारी बातों का, सारे सुखों का त्याग करना पड़ेगा, तब आप विश्व की सेवा कर पाएंगे। विश्व की सेवा आपके हिसाब से नहीं, जो बच्चे अपने हिसाब से सेवा करते हैं, अपने समय पर करते हैं, उन्हें त्यागी नहीं कहा जा सकता। सेवाधारी कह सकते हैं पर त्यागी नहीं कह सकते, समझ की बात। त्यागी वही जो जिस समय में जो आए उसे भरपूर करें, अपनी नींद ना देखे, अपना भोजन पानी ना देखे, अपनी व्यवस्था ना देखे, ये सब छोड़ के आने वाले को भरपूर करना, इसे त्याग कहा जाता है। त्याग इस शब्द में आराम से दूरी है, विश्राम से दूरी है, अंदरूनी विश्राम है बेहद का बाप के संग में। त्याग करने वालों को ही बाप शक्ति देता है, शक्ति देता है। जो अपने तन को संभाल के तन सेवा करने की कोशिश करते हैं, उनका तन कमजोर ही रहता है। तन की परवाह न करते तन सेवा करते हैं, उनके तन की स्वस्थता बाप देता है, और उनके तन के सारे कार्मिक अकाउंट बाप नष्ट करता है, बाप सेटल करता है। मन जैसा है जो है, भल 0.1% उसमें शुद्ध विचार चलते हैं, लेकिन उस 0.1 को लेकर भी जो बच्चे सकाश देने की कोशिश करते हैं, मनसा सेवा करने की कोशिश करते हैं, शुभ भावना शुभ कामना देने की कोशिश करते हैं विश्व को, उनके मन के कार्मिक अकाउंट बाप सेटल करता है। हर रूप से जो तुम्हारे पास है, जो है जैसा है, उससे तुम्हें जितनी होती है, जैसे होती है, तुम सेवा करते हो तो उस रूप के कार्मिक अकाउंट बाप सेटल करता है। पर जो संभल कर करते हैं, बाप उन्हें कहता है योग करो, आत्मा समझकर बाप को याद करो 8 घंटा। जिन्होंने अपने को संभला नहीं है, मना उन्होंने अपने आप को समर्पण कर दिया, तेरा तू जाने सब तेरा, समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए त्याग के बिना सेवा नहीं होती। आपके अंदर अगर गुण है तो आप इस मार्ग पर रुकना, वरना बड़ी कठिनाई होगी इस मार्ग पर चलने के लिए, अगर आपके अंदर त्याग की भावना नहीं है तो, कोई सामने प्यासा है, तुम भी प्यासे हो, तुम्हारे हाथ में पानी है, लेकिन पहले पानी उसको देना, फिर बचा हुआ तुम पीना, ये त्याग है। पहले सामने वाले की भूख मिटाना अन्न के रूप में, फिर तुम भोजन करना, त्याग की भावना है ये। समझ की बात है, पहले आत्माओं को शांत करना सकाश देके, फिर चैन की नींद में सोना बाप की याद में, यह त्याग है। पहले आत्माओं को मुक्ति देना भटकने वाले, सकाश देके मुक्त भव के वरदान से, मास्टर सर्वशक्तिवान मास्टर रचयिता के वरदान से, फिर चैन से बाप की गोदी में सोना, यह त्याग है। पहले आप, इसे त्याग कहा जाता है। अभी बाबा कहते हैं त्याग और सेवा तो मुख्य बात है, लेकिन सबसे बड़ा बलिदान कौन सा है? दूसरों के अवगुणों का त्याग करना, यह है बड़ा त्याग। दूसरों के अवगुणों का, किसी में अवगुण ना देखना, दिखे तो भी ना देखना, दिखे तो भी ना देखना। रावण का भी नाम आए तो भी पहले याद आए महाज्ञानी महापंडित महाशिव भक्त, बाकी ना याद आए, बाकी तो उसका पार्ट था, उसका ड्रामा था। इस दुनिया में हर आत्मा में सद्गुण है, कम से कम है, लेकिन है, वो आत्मा है, इससे बड़ा सद्गुण क्या हो सकता है? आत्मा है मना, श्रेष्ठ रचना है बाप की, बच्चे बाप के, बस इतना भी याद रहे कि हर बच्चा बाप का बच्चा है, परमात्मा का बच्चा है, ईश्वर भगवान का बच्चा है, तो भी गुण देखा, अवगुण आया ही नहीं। अवगुण नहीं देखो, और अगर आपके अंदर कोई देखता है, आपके अंदर, तो मुबारक हो आपको। क्यों? इस साइंस को, इस ड्रामा के प्रिंसिपल को समझिए। इस कलयुग में जब भी कोई किसी के अंदर अवगुण देखता है, तो उसका अवगुण जल्दी देखने वाले के अंदर आ जाता है। इसलिए आपके अंदर अगर किसी को अवगुण दिखे तो खुश हो जाना, बुरा नहीं मानना। अगर किसी ने अवगुणी बोला आपको तो खुश हो जाना, और वहां भी बाप को याद करना। जब भी कोई अवगुण देखे, बाप को क्यों याद करना? इसलिए कि आपके अंदर का अवगुण उसमें ना जाए, वो बाप में जाकर नष्ट हो जाए। इसलिए बाप को याद करना। किसी ने अगर आपके अवगुण जाहिर किए, उससे बड़ी खुशी क्या होगी आपके लिए? झूठे सद्गुण तो सभी जाहिर करते हैं, झूठे जो होते नहीं, पर लोग एक दूसरे की तारीफ करते हैं। पर अगर अवगुण बताए तो बड़ी खुशी होगी, बड़ा अच्छा लगेगा। चलो पता तो चला कि हमारे अंदर यह है। और अगर बोल रहा है कोई, मना होना चाहिए, भल तुम्हारी नजर से नहीं हो सकता, पर सामने वाले की किसी न किसी एंगल की नजर से हो सकता है। अच्छा है कि तुम्हें पता तो चला। इसलिए गाते हैं ना कि निंदा करने वाले का घर बाजू में होना चाहिए, वो इसीलिए कि पता तो चले, वरना जीवन भर लोग तुम्हारी स्तुति करते रहेंगे और अंत में धर्मराजपुरी में पता चलेगा, सब झूठी स्तुति थी, तुम्हारे अंदर स्तुति करने योग्य कुछ था ही नहीं, सब अवगुण ही थे। बुरा लगेगा फिर। और धर्मराज से डंडे खाने पड़ेंगे। इसलिए दूसरों के अवगुणों का त्याग करना, किसी के अंदर भी अवगुण नहीं देखना। देखिए, अगर आपने देखा तो आपके अंदर आ जाएगा, ध्यान रखना। आपको देखना नहीं है, हर आत्मा को बाप की संतान के रूप में देखना है, भल वो ज्ञान में है या नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। हर आत्मा को ईश्वर की श्रेष्ठ रचना के रूप में ही देखना है। वर्णन तो कभी नहीं करना किसी के अवगुण, अगर मुख से वर्णन किए कि वो फिक्स हो जाते हैं आपके अंदर। ध्यान रखना, ये ड्रामा का प्रिंसिपल है, तत्व है, इस तत्व से ड्रामा चलता है। अगर आपने किसी के अवगुणों की चर्चा की मन में या मुख में, अपने से या किसी और से चर्चा, अवगुण फिक्स हो जाएगा, देखना ही नहीं है। सद्गुण का चश्मा लगाओ, उसी से देखो तुम हर किसी को, बाप समान दृष्टि से देखो, अवगुण नहीं दिखेंगे, अहोगुण दिखेंगे। अहो मना बहुत ज्यादा, बहुत सारे अहोगुण। अहो परम भाग्य कहते हैं ना, वैसे अहोगुण। अहोगुण की दृष्टि, बाप समान दृष्टि से देखो। तो बाबा कहते हैं, दूसरों के अवगुणों का त्याग करना, यह है बड़ा त्याग, बड़ा त्याग। सांप को कभी काटने वाला नहीं देखना, सांप को हमेशा शंकर के गले का हार देखना। काटने वाला क्यों देखें? तुमने अगर काटने वाले के रूप में देखा तो वो जरूर काटेगा, लेकिन शंकर के गले का हार, विष्णु की शैया देखा तो तुम शंकर या विष्णु बन जाओगे, तपस्वी, स्वराज्य अधिकारी, ऐसे बन जाओगे। इसलिए सब में सद्गुण देखना है, बस देखने की दृष्टि चाहिए। सब में है, सब में सद्गुण है। जहर से भी दवाई बनती है, ध्यान रखना। और सभी के सद्गुणों को देखते रहना। दूसरों के अवगुणों का त्याग करना, यह है बड़ा त्याग। किसी के अवगुण नहीं देखो, सभी में सद्गुण देखो, ना भी हो फिर भी देखो। बाप का बच्चा है, मना सद्गुण है, बस अभी इमर्ज नहीं है, ड्रामा है उसका। वो भी तो मास्टर शांति सागर है, मास्टर सुख सागर है, मास्टर सर्वशक्तिवान है, बस उसका पार्ट अभी नहीं कि वो इमर्ज नहीं है। तुम्हारा पार्ट है कि तुम इमर्ज रूप में गुण को अनुभव कर पा रहे हो अपने में। दूसरों का पार्ट अभी शुरू नहीं हुआ है, एक समय पर शुरू हो जाएगा, क्योंकि अंत तक सारी दुनिया कहेगी मेरा बाबा। अगर सारी दुनिया कहेगी मेरा बाबा, मना सभी बच्चे बाप के हैं ना, तो किसी के प्रति अवगुण नहीं देखना। एक समय पर तुम भी अवगुणी थे अगर देखे तो, आज तुम सद्गुणी बने हो तो दूसरों को अवगुणी देख रहे हो। तुम जरा पास्ट देखो, वर्तमान में मत जाओ, वर्तमान पर मत रहो, पास्ट देखो अपना। जिसको पता है ना मैं मिट्टी से निकला हूं, वो मिट्टी से निकलने वाले को कभी नहीं कहेगा कि तुम गंदे हो, शब्द विपरीत हैं, कभी नहीं कहेगा तुम्हारी रचना भी वैसे ही थी, अभी तुम बने हो या बन रहे हो, समझ की बात है। इसलिए सभी में सद्गुण देखना, सभी को स्नेह की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से देखना, सभी को सुख शांति की दृष्टि से, आनंद की दृष्टि से देखना, सभी को भरपूर करना, सभी को आत्मा देखना। तुम सदा मैं और मेरा बाबा इस कंबाइंड स्वरूप में रहना और सभी को बाप की श्रेष्ठ रचना आत्मा इस रूप में देखना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना, सभी को भरपूर करते रहना। अभी तुम बाप के लाडले बने हो, प्यारे बने हो, ऐसे सारी दुनिया को बनाना। यह भाग्य, यह सौभाग्य, यह पदम गुणा भाग्य सारे विश्व को देना और सारे विश्व को सुखी करना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति।